नमस्कार भारत, आज है 14 जून दिन मंगलवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। ऑरलैंडो के एक समलैंगिक क्लब पर हुए हमले को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बताया घरेलू उग्रवाद की उपज।
One of the biggest challenges we are going to have is this kind of propaganda.
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा मुस्लिमों के अमेरिका आने पर लगना चाहिए अस्थायी प्रतिबंध। जानिएगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी का क्या रहा हासिल। समान नागरिक संहिता को लेकर समाज में बहस जारी, क्या कभी संभव हो सकेगा कॉमन सिविल कोड का सपना।
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है, हर कानून में है। ड्राफ्ट बताइए, दिखाइए, आप ड्राफ्ट कीजिए, दीजिए लोगों को तो, और फिर इनवाइट कीजिए लोगों को, क्या बताइए आपको क्या ऑब्जेक्शन। हिंदुओं को एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। अमेरिका के ऑरलैंडो में नाइट क्लब में गोलीबारी को राष्ट्रपति बराक ओबामा ने घर में ही पनपा उग्रवाद बताया है और कहा है कि अमेरिका के बाहर से की गई साजिश के कोई संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। इस बीच अमेरिकी पुलिस ने फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में समलैंगिक नाइट क्लब में हमले के समय का ब्यौरा दिया है। ऑरलैंडो पुलिस ने कहा है कि मतीन ने हमले के वक्त कहा था कि उसके पास विस्फोटक और कई साथी भी हैं, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की जो 3.5 घंटे चली। इस गोलीबारी में 49 लोगों की मौत हो गई थी। ऑरलैंडो में कई प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई हैं। फ्लोरिडा में इमाम मोहम्मद मुस्ती ने कहा कि मुस्लिम समुदाय नफरत और तबाही की विचारधारा के खिलाफ खड़ा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक उपनगर मैग्नन विल में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस अधिकारी पर उनके घर के बाहर चाकू से हमला किया गया। बाद में हमलावर पुलिस अधिकारी के घर में घुस गया। पुलिस ने जब घर पर छापा मारा तो महिला और कथित हमलावर का शव बरामद हुआ है। हालांकि इस घर से 3 साल के एक बच्चे को सुरक्षित पाया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि संदिग्ध हमलावर की पहचान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन को $26 अरब में खरीदने जा रही है। ये सौदा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे बड़ा सौदा है। ये माइक्रोसॉफ्ट की ओर से सबसे बड़ी कंपनी का टेक ओवर माना जा रहा है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट 1 अरब से ज़्यादा कीमत वाली 8 कंपनियों का टेक ओवर पहले कर चुका है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2011 में स्काइप और 2013 में नोकिया को खरीदा था। लिंक्डइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ वेनर ने कहा है कि इस सौदे से दोनों कंपनियों और ग्राहकों को फायदा होगा।
I think it's significant for multiple reasons. Top of mind is this combination of LinkedIn.
जेफ वेनर कह रहे थे कि ये कई वजहों से अहम है। लिंक्डइन का पेशेवर लोगों का नेटवर्क और माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना एक नेटवर्क है। ये अनोखा और अपनी तरह का पहला मेल होगा और इसका स्तर व्यापक होगा। लिंक्डइन के 40 करोड़ से ज़्यादा सदस्य और माइक्रोसॉफ्ट के दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा ग्राहक हैं, तो इसकी अपार संभावनाएं हमारे सामने हैं। ये थे जेफ वेनर के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मेक्सिको के एक गांव में शुक्रवार को एक गोलीबारी में मारे गए 11 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शुक्रवार को कुछ नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोलियां चलाईं जिनमें इनकी मौत हो गई थी। पेउब्ला प्रांत में पुलिस ने कहा है कि हत्याकांड के पीछे धार्मिक असहनशीलता की वजहों की भी जाँच की जा रही है, लेकिन अभियोजनकर्ता का कहना है कि ये हत्याएं बदले की भावना से की गई हो सकती हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत फ्लोरिडा के ऑरलैंडो शहर में हुए हमले की खबर से। 50 लोगों की जान लेने वाले इस हमले के बारे में अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि ऑरलैंडो में जो घटना हुई है वो घर में ही उपजे उग्रवाद का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि हमलावर उमर मतीन को अमरीका के बाहर से निर्देश मिले थे। उधर मामले की जाँच कर रही FBI ने कहा है कि हमले के दौरान किए फोन कॉल्स में मतीन ने कई कट्टरपंथी समूहों से जुड़े होने की बात कही थी। पूरा ब्यौरा सुनिए हरिता कांडपाल से।
अमेरिका के ऑरलैंडो में नाइट क्लब में गोलीबारी करने वाले उमर मतीन को लेकर जांच जारी है। उमर मतीन ने ऑरलैंडो में समलैंगिकों के एक क्लब में अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 49 लोगों की मौत हो गई थी और 53 लोग घायल हो गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि ये हमला घर में ही पनपे उग्रवाद का नतीजा है और इसके संकेत नहीं है कि उमर मतीन को बाहर से किसी ने कोई दिशा निर्देश दिए थे।
One of the biggest challenges we are going to have is this kind of propaganda.
बराक ओबामा कह रहे थे, हमारे सामने इंटरनेट पर इस्लाम को विकृत तरीके से पेश करने वाले प्रचार को रोकने और कमजोर और बीमार लोगों के मन पर इसके असर को रोकने की चुनौती है। हम देखते हैं कि ऐसे लोग अमेरिका और दुनिया में लोगों को निशाना बनाते हैं। ये बहुत दुखद है। इस तरह की कट्टरपंथी विचारधारा से लड़ना उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जितना देश के बाहर से होने वाले हमलों की साजिशों से लड़ना है। बराक ओबामा के शब्द। इस बीच हमले की रात क्या हुआ था, इस पर भी जानकारी सामने आई। रविवार सुबह 2 बजे जब क्लब में चल रही लैटिन नाइट में हिस्सा लेने के लिए आए लोगों से क्लब खचाखच भरा हुआ था, हमलावर उमर मतीन ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। जब तक पुलिस बल वहां पहुंचता, तब तक एक पुलिस अफसर जो ड्यूटी पर नहीं था, उसने जवाब में गोलियां चलाई। ऑरलैंडो पुलिस मुखिया जॉन मीना के मुताबिक मतीन को बाथरूम में छुपना पड़ा, जहां उसने कुछ लोगों को बंधक बना लिया। पुलिस ने विस्फोटकों की मदद से क्लब की दीवार में सुराग किया, जिससे कुछ लोग बाहर आ सके। मतीन इन लोगों के पीछे गोलियां चलाता हुआ बाहर आया, फिर पुलिस के मुताबिक उसकी मौत हो गई। फिलहाल अमरीकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक जेम्स कूमी ने कहा कि उमर मतीन इंटरनेट से प्रभावित था। जेम्स कूमी कह रहे थे, अभी तक इस तरह के संकेत नहीं मिले हैं कि अमेरिका के बाहर से कोई साजिश की गई थी और उसके किसी संगठन से जुड़े होने के सबूत नहीं हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस चरमपंथी संगठन से प्रभावित था, हालांकि उसने हमले के वक्त ISIL से समर्थन जताया था। जांचकर्ता मतीन के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। उसके फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान खंगाले जा रहे हैं। FBI के निदेशक जेम्स कूमी ने कहा कि समलैंगिकों पर किए गए इस हमले के पीछे की सोच के बारे में भी छानबीन की जा रही है।
ब्यौरा सुना रही थी हरिता कांडपाल। और अब सीधे चलते हैं वॉशिंगटन BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, ऑरलैंडो हमले के बाद राजनीति गर्मा गई है, कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से मुसलमानों को नाराज करने वाला बयान दिया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने?
जी बिल्कुल सही कहा आपने, राजनीति अब इस पर काफी गर्म हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने काफी सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ अमरीका में मुसलमानों के आने पर रोक लगाने की बात दोहराई, उन्होंने उन देशों से आप्रवासन पूरी तरह से रोक देने का ऐलान किया जहां अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ उनके शब्दों में आतंकवाद का इतिहास रहा है। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
We cannot continue to allow thousands upon thousands of people to pour into our country, many of whom have the same thought process as this savage killer.
ट्रंप कह रहे थे कि हम उन हजारों लोगों को अपने देश में नहीं घुसने दे सकते जिनमें से कईयों की सोच वैसी ही है जैसी उस बर्बर हत्यारे की थी। उनका कहना था कि जिहादी इस्लाम अमरीकी उसूलों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। उन्होंने स्थानीय मुसलमान समुदाय पर भी निशाना लगाते हुए कहा कि वो ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं, सामने नहीं आते हैं, और अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो ऐसे लोगों को जो इसकी जानकारी नहीं सामने लाते हैं, इसके परिणाम भुगतने होंगे। तो काफी हद तक अब तक जो वो कहते रहे हैं उससे भी ज्यादा तीखापन था उनके बयानों में आज। और उन्होंने साथ ही हिलरी क्लिंटन और राष्ट्रपति ओबामा की जो नीतियां रही हैं उनकी भी कड़ी आलोचना की।
ब्रजेश, जो संभावित डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं हिलरी क्लिंटन, उन्होंने ओहायो में ट्रंप पर पलटवार किया है, उनका क्या कहना था?
देखिए, हिलरी क्लिंटन ने इस मामले के बाद ज्यादा जोर असॉल्ट राइफल्स जो आमतौर पर फौज में इस्तेमाल होते हैं और जिसका उमर मतीन ने जिसका इस्तेमाल किया है उन पर प्रतिबंध लगाने की बात की और कहा मुसलमानों के खिलाफ ट्रंप के बयानों की साथ ही उन्होंने जो उन्होंने बयान दिए उसकी खासी आलोचना की। सुनिए क्या कहा हिलरी क्लिंटन ने।
Inflammatory anti-Muslim rhetoric and threatening to ban the families and friends of Muslim Americans as well as millions of Muslim.
तो बगैर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए हुए ही क्लिंटन कह रही थी कि मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषा, उनके परिवारों और दोस्तों पर प्रतिबंध लगाने की बात और लाखों मुसलमान बिजनेसमैन और पर्यटकों को देश में घुसने से रोकने की जो बात है उन ज्यादातर मुसलमानों को चोट पहुंचाती है जो आजादी से प्यार करते हैं और आतंक से नफरत करते हैं। हिलरी क्लिंटन ने अपनी नीतियों में इंटरनेट पर और कड़ी निगरानी की बात कही है। इस तरह के जो लोन वुल्फ अटैक कहे जाने वाले हमलों को रोकने के लिए एक नई यूनिट बनाने की बात की है, लेकिन कुल मिलाकर सबसे ज्यादा उन्होंने खतरनाक बंदूकों पर रोक लगाने की बात की।
ब्रजेश, बहुत संक्षेप में बताइए कि ट्रंप और हिलरी क्लिंटन की जो दलीलें हैं उसका चुनाव में फायदा किसे मिलने के आसार हैं, बहुत संक्षेप में।
देखें, डोनाल्ड ट्रंप के पिछले एक साल के बयानों और चुनाव अभियान को देखें तो स्पष्ट है कि उनके लिए इस तरह के बयान काम करते रहे हैं। अभी तक वो रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी चुनाव अभियान में थे, जो लोग उनकी तरफ खींचे चले आए उनमें से बहुतों की सोच काफी हद तक ट्रंप की बातों से मिलती जुलती रही है और ट्रंप में उन्होंने एक नेता देखा है जो बगैर लाग लपेट के ये बातें कर रहे हैं। लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि इस तरह के अगर हमले जब होते हैं तो दूसरी यानी डेमोक्रेट के भी काफी ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें इस तरह की बातें हो सकता है ट्रंप की तरफ आकर्षित करें।
जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
सोमवार को इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद एक बड़ी रैली हुई। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में आए लोगों से बड़ी गर्मजोशी के साथ संवाद कायम करने की कोशिश की। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि कार्यकारिणी की बैठक के दौरान चुनाव से जुड़ी कुछ घोषणाएं भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने फर्स्ट पोस्ट के कार्यकारी संपादक अजय सिंह से बात की और पूछा कि दो दिन की बैठक का क्या रहा हासिल।
देखिए, एक बात तो बहुत साफ समझ में आई कि जो वेन्यू चुना गया था उसके पीछे अगर कोई मुख्य कारण था वो ये था कि यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं। और अगर आप देखें तो जिस तरह से वहां पे रैली में जिस तरह से आह्वान हुआ कि आप हमें 5 साल का मौका दीजिए और अगर 5 साल हमारे आते हैं तो जो आज तक काम नहीं हुआ है वो सब हो जाएंगे, तो कुल मिला के एक राजनीतिक रणनीति के तहत ये हुआ और एक जो इलेक्टोरेट को संदेश ये देना चाहते थे वो इन्होंने दिया है। अब वो सफलता कितनी होती है ये तो अभी की बात नहीं है, लेकिन ये रणनीति का हिस्सा था जिसकी वजह से इलाहाबाद में इनका जो राष्ट्रीय अधिवेशन था वो हुआ।
जो पूरी बैठक की कार्रवाई रही जो दो दिन की मीटिंग में, ये भी था बहुत सारी चीज़ें कि राजनाथ सिंह को आगे किया जाएगा और इस तरह की कुछ चुनाव से रिलेटेड लग रहा था कि कुछ ऐसी घोषणाएं हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या चल रहा है पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश को लेकर के?
देखिए, मीडिया का वो स्पेकुलेशन था कि राजनाथ सिंह सामने आएंगे, लेकिन हकीकतन अगर आप देखें तो राजनाथ सिंह ने ऐसा कभी इरादा नहीं जाहिर किया और ना ही पार्टी के सीनियर लेवल पे इस तरह की कोई नीति बनी जिसमें राजनाथ सिंह को सामने रख के इलेक्शन में जाना है। मीडिया ने स्पेकुलेट किया था तो वो स्पेकुलेशन सही नहीं था, पर इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं ये इम्फेसिस था कि राजनाथ सिंह को एक फेस वहां रखा जाएगा, मुख्यमंत्री का नहीं लेकिन भारत के एक इम्पोर्टेंट नेता के रूप में जो कि यूपी से आते हैं और जिनका एक कास्ट अपील भी है।
क्या उभर कर क्या चीज आई सामने, क्या करने जा रही है बीजेपी, कुछ ऐसा संकेत मिल पाया?
देखिए, उभर के जो बात आई सामने वो एक बात बहुत साफ थी, जो धार्मिक भावनाएं हैं यानी जो पार्टी का हिंदुत्व एजेंडा है वो डाइवोर्स नहीं होगा, यानी वो लगातार रहेगा, विकास उसके ऊपर दिया जाएगा। तो विकास और हिंदुत्व इन दोनों को एक अजीब ढंग से लिंक कर दिया गया है और एक इस तरह से बताया गया है कि विकास और हिंदुत्व दोनों रहेगा।
कोई नई बात जो आपने महसूस की हो?
नई बात एक चीज जो हमें दिखाई दी, अगर आपने पीएम का स्पीच सुना हो तो संदेश कहीं ना कहीं जा रहा था जिसमें कि बैकवर्ड जो बैकवर्ड कास्ट है उसको अपील था, निषाद राज की बात कि हम जहां से बोल रहे हैं वो एक कास्ट का जगह कास्ट के नाम से आइडेंटिफाई होता है। इसी तरह कई और छोटे छोटे जो समूह हैं कास्ट के उनको भी अपील किया गया। तो एक ओबीसी इम्फेसिस जो बीजेपी में अपेरेंटली नहीं होता था, मतलब साफ तौर पे उसको नहीं रखा जाता था, वो साफ दिखाई दिया, लेकिन सिर्फ उसी पे नहीं छोड़ा गया, कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि जातिवाद को छोड़ना चाहिए।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह, जिनका कहना है कि यूपी चुनाव को देखते हुए बीजेपी दलितों और पिछड़ों को लुभाने की कोशिश कर रही है। और अब सीधे चलते हैं इलाहाबाद अपने सहयोगी समीर आत्मज मिश्र के पास। समीर, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वहां के अखबारों में आज क्या कुछ छपा है?
जी अमरेश, जाहिर सी बात है कि इलाहाबाद के लिए ये काफी कार्यकारिणी यहाँ पे हुई थी, तो उसी तरह से यहाँ अखबारों में उसको जगह भी दी गई है। और जिस तरह से यहाँ की सड़कें और रास्ते बैनरों और पोस्टरों से पटे पड़े हैं, उसी तरह से अखबारों में खबरें और तस्वीरें भी छपी पड़ी हैं। लगभग सभी अखबारों ने इसी खबर को प्रमुखता से जगह दी है अलग अलग तरीके से। संगम से यूपी का शंखनाद, ये शीर्षक है दैनिक जागरण अखबार का। अखबार ने अपने संपादक की त्वरित टिप्पणी भी छापी है कि सियासी कुंभ से मिथक तोड़ने निकली भाजपा। और पायनियर, हिंदी पायनियर अखबार लिखता है कि समाज के लिए करें सत्ता का उपयोग, ये उसकी हेडिंग है। और अखबार ने जो 7 मंत्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिए, उसका भी जिक्र किया हुआ है। उसके अलावा ज्यादातर अखबारों ने सपा, बसपा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर जो प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, उसे ही अपना शीर्षक बनाया है, हेडलाइन बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि एसपी एंड बीएसपी इन कॉन्ट्रैक्ट टू लूट यूपी, बीजेपी द ओनली होप। और अपर जाला की हेडिंग है सपा बसपा की जुगलबंदी खत्म होनी चाहिए। यूनाइटेड भारत लिखता है मुलायम मायावती में लूट की जुगलबंदी। तो लगभग सभी अखबारों ने इस शीर्षक को, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका की भी हेडिंग इसी तरह की है, सभी अखबारों ने समाजवादी पार्टी और बसपा पर जो प्रहार किया उसको अपना हेडलाइन बनाया है। अंदर के पृष्ठों पर भी अगर निगाह डालें तो वहां भी रैली से संबंधित खबरें हैं। और रैली के बाद जो तस्वीर बनी, पूरे शहर में जाम लग गया, उस खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। एक हिंदुस्तान अखबार की एक खबर है कि पीएम मोदी के बयान से वकील नाराज, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील है उनकी नाराजगी वहां पे दिखाई पड़ी।
जी समीर, आपको मैं रोकूंगा यहां पर, समय की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
महाराष्ट्र में भयंकर सूखे का सामना कर रहे किसानों के सामने अब बुआई का संकट आ खड़ा हुआ है। राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद बैंक किसानों के कर्ज का पुनर्गठन कर नया कर्ज देने में झिझक रहे हैं। लगातार सूखे से बदहाल हो चुके लाखों किसानों के पास अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। मानसून दस्तक देने को है लेकिन किसानों के पास बीज खाद तक के पैसे नहीं हैं। नागपुर से संजय तिवारी की रिपोर्ट सुनिए।
इस हफ्ते महाराष्ट्र में मानसून आने वाला है लेकिन लाखों एकड़ जमीन पर बुआई से जुड़ी कोई तैयारी नहीं हो रही। अब कवड़ू मालवे की बात ही ले लीजिए। विदर्भ के वर्धा जिले के इस किसान के पास कहने को तो 18 एकड़ खेती है लेकिन लगता है इस बार खेत खाली ही रहेंगे क्योंकि इन्हें नया कर्ज नहीं मिल रहा। लगातार सूखे के कारण कर्ज लेने का ये लगातार दूसरा साल है। राज्य सरकार ने बैंकों को कर्ज का पुनर्गठन कर उसे 5 साल में वसूली का आदेश दिया था। इसके साथ ही पहले साल का ब्याज सरकार की तरफ से देने की बात हुई थी। बावजूद इसके ना तो बैंक नया कर्ज दे रहे हैं और ना ही पिछले साल का ब्याज माफ करने पर रजामंद हो रहे हैं। कवड़ू मालवे,
मेरे ऊपर 5,45,000 है।
और बैंक क्या बोल रही है?
बैंक बोलते हमको दिया नहीं, बोलते हमने अर्ज भी दिया वहाँ, साहब दे नहीं रहा वो बैंक, तो क्या करूँ।
बड़े या छोटे ज्यादातर किसानों का यही हाल है। उधर बैंक के अधिकारी मीडिया से बात नहीं कर रहे। मराठवाड़ा में किसानों को कर्ज बांटने वाली सेवा सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष संभाजी वायाल खुद इसके लिए जिला बैंकों को दोषी मानते हैं।
ये सोसाइटी का जो कर्ज है हमारा वो डीसीसी बैंक से मिलता है। पिछले 4 साल से बारिश नहीं यहाँ पे, तो किसान यहाँ पे ब्याज नहीं दे सकते। 2013-14 का जो किसान का रहे वाला ब्याज है तो उसका पुनर्गठन नहीं कर रही बैंक का।
महाराष्ट्र में किसानों को जो कर्ज देना है उसमें 35% सहकारी यानी कोऑपरेटिव बैंक और 65% राष्ट्रीयकृत बैंकों को देना है। सहकारी बैंक कह रहे हैं कि उनके पास जितना था वो दे चुके और सूत्र बताते हैं कि 31 मई तक राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सिर्फ 10% कर्ज दिया है। आजादी के 6 दशक बाद महाराष्ट्र जैसे राज्य में 60% किसान बैंक और संस्थागत कर्ज व्यवस्था से अब तक वंचित हैं। 80% किसानों को संस्थागत कर्ज मिलना चाहिए, ऐसा इस बार राज्य सरकार का आदेश है। महाराष्ट्र सरकार के किसान मिशन के मुखिया किशोर तिवारी,
राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने 28 अप्रैल को ये निर्णय ले लिया कि मुझे 80% किसानों को लाना है, जिसके लिए मैं 2012 से जो अकाल पड़ने का साल है उससे जितने किसानों को बैंक के दरवाजे बंद हुए वो मैं खोलने वाला हूँ। लेकिन मुझे दुख होता है कि जो किसान विरोधी हमारा रिजर्व बैंक का गवर्नर है रघुराम राजन, इतनी क्यूरी कंप्लायंसेस निकाल रहे हैं कि ये 40% किसान जो मेरे बैंक नेटवर्क में आने वाले हैं वो रघुराम राजन के वजह से नहीं आ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड दोनों सोए हुए रहने से किसान हमारे बहुत परेशानी में है।
बैंकों के नजरिए से देखें तो इसके पीछे कुछ राजनीतिक रस्साकशी है और कुछ कर्ज की राशि के दोबारा डूबने का डर, लिहाजा किसानों को कुछ सूझ नहीं रहा कहां जाएं और क्या करें।
ये थे संजय तिवारी। समान नागरिकता के कानून के लिए समाज में वर्षों से बहस जारी है। इसकी वकालत करने वालों का कहना है कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नागरिक कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के क्यों ना हो। सरकारें भी इस तरह का कानून बनाने की हिमायत करती रही हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों की वजह से किसी सरकार ने इसे लागू करने के लिए कभी कोई ठोस पहल नहीं की है। तो क्या भारत में कभी समान नागरिक संहिता संभव नहीं हो पाएगी? यही जानने की कोशिश की है बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने।
हाल ही में भारत की सर्वोच्च अदालत ने समान नागरिक संहिता को लेकर दायर की गई एक याचिका खारिज करते हुए ये कहा कि इस सवाल पर संसद को ही निर्णय लेना है। दरअसल रह रहकर इस तरह की याचिकाएं अदालत में दायर होती रही हैं, क्योंकि ज्यादातर समाजों के लिए बनाए गए कानून उनके धर्म के रीति रिवाजों पर आधारित हैं। हालांकि हिंदू कोड बिल में सिख, बौद्ध और जैन समाज को रखा गया है, जबकि मुसलमानों के लिए शरीयत पर आधारित कानून ही लागू रहा। हिंदू कानून में बदलाव आते रहे, मगर मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई तब्दीली नहीं की जा सकी। मगर मुस्लिम समाज में ही इस मुद्दे पर खासी बहस चल रही है, क्योंकि समाज की महिलाओं और बुद्धिजीवियों का मानना है कि इस कानून में लिंग भेद है। विधि आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके ताहिर महमूद कहते हैं कि इस मुद्दे पर बहस तो जोर शोर से होती रही है, मगर ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा गया है।
प्रोविजंस उन कानून के जो आप बनाएंगे, आप बनाइए, हिंदुओं के लिए बनाइए, मुसलमानों के लिए बनाइए, क्रिश्चियंस के लिए बनाइए, जो बने हुए कानून हैं उनमें जो खराबियां हैं उनको रिफॉर्म कीजिए, लेकिन जो नए प्रोविज़न आप बनाएं, नए कानून हो या किसी कानून को रिफॉर्म करके अमेंड करके नया प्रोविज़न बनाएं, उसमें जहां तक मुमकिन हो यूनिफॉर्मिटी यकसानियत होनी चाहिए। तो अगर 1500 बरस पहले बने हुए कानून में या 2000 बरस पहले बने क्रिश्चियन लॉ में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें क्या ताज्जुब की बात है भाई। डिस्क्रिमिनेशन तो है ही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है, हर कानून में है। ड्राफ्ट बताइए, दिखाइए, आप ड्राफ्ट कीजिए, दीजिए लोगों को तो, और फिर इनवाइट कीजिए लोगों को, क्या बताइए आपको क्या ऑब्जेक्शन है। हिंदुओं को एक्सेप्टेबल नहीं होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विचारक संदीप महापात्रा कहते हैं कि सवाल समाज में महिलाओं के अधिकार का है, इसलिए जिस तरह भारतीय दंड संहिता और CRPC सब पर लागू है, उसी तरह समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए जो सबके लिए हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान।
निश्चित रूप से कई एक शुरुआत तो करनी पड़ेगी, वो चाहे लॉ कमीशन के माध्यम से कोई ड्राफ्ट है, जैसे लॉ कमीशन है बहुत सारे रिपोर्ट्स देती हैं, बहुत सारे सजेशंस देती हैं। हमने ये देखा है कि पिछले 2-3 वर्षों में लॉ कमीशंस ने कुछ ऐसे लॉज जो कि मान लीजिए आर्बिट्रेशन जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन, उसमें कुछ सजेशंस दिए, वो इनकॉर्पोरेट हुआ, वो इनैक्ट भी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए और एक बड़ी सोच होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ चेंजेस आए, किस तरह के चेंज आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में गोवा भी एक ऐसा स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है।
हिंदू महासभा के मुन्ना शर्मा कहते हैं कि हिंदुओं में शादी जन्मों का बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, साथ ही सम्मिलित हिंदू परिवार की जो कल्पना है वो इस समाज की संस्कृति का हिस्सा भी है, मगर अब आधुनिक युग में महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए कि वो अपने फैसले खुद कर सकें।
देखिए, हिंदू कोल बिड में इनहेरिटेंस के कुछ कानून लाए गए हैं सरकार के द्वारा। पहले तो स्थिति ज़्यादा खराब थी महिलाओं की, लेकिन सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास हुए और कुछ वर्षों में कई कानून आए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा हुआ, दूसरा कानून आया कि बेटियों को भी बेटों के समान अधिकार दिए गए। तो इसमें हमारा मानना है कि महिलाओं को भी पिता की प्रॉपर्टी और पति की प्रॉपर्टी में महिलाओं का भी अधिकार होना चाहिए।
अखिल भारतीय ईसाई परिषद के महासचिव जॉन दयाल का कहना है कि ईसाइयों में भी दो अलग पंथ हैं, एक रोमन कैथलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथलिक समाज में तलाक की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि शादी को जन्म जन्मांतर का बंधन माना गया है, वहीं प्रोटेस्टेंट्स में तलाक जायज है।
ईसाई भी एक समुदाय नहीं है, डिनोमिनेशनली कैथलिक्स, जो कि मैं खुद कैथलिक हूँ, हमारे यहाँ डिवोर्स मान्य नहीं है। शादी सेक्रमेंट है, जन्म जन्मांतर तक आप फंस गए इसमें। प्रोटेस्टेंट्स में डिवोर्स है। इस कैथलिक्स में अगर आपको अपनी बीवी से अलग होना है तो मैरिज को डिसॉल्व करना पड़ेगा कि जैसे कभी शादी हुई ना हो, क्योंकि प्रोसेस रिलीजियस है। उसको बिशप हाउस में जो जुडिशियल विकार है तो उसमें बिशप कह सकते हैं कि शादी हुई नहीं। प्रोटेस्टेंट्स में सिविल डिवोर्स है और उसकी मान्यता भी है।
दूसरी तरफ सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के राणा परमजीत सिंह के विचार इस मुद्दे पर थोड़े अलग हैं। वो कहते हैं कि उनके समाज को हिंदू सक्सेशन एक्ट के अधीन रखा गया है, जबकि सिख धर्म हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है।
हम उसकी मांग लंबे समय से कर रहे हैं कि हम एक अलग, हमारी कौम है, हमें उनके साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव जी, उन्होंने जनेऊ नहीं पहना। तो अभी तक हमारे को वही धारा 25 के चक्कर में हम लगे हुए हैं कि वो हट जाए और हमारा एक इंडिपेंडेंट धर्म माना जाए। पर अभी भी जो हमारे कोर्ट्स में केस चलते हैं वो हिंदू धर्म के एक्ट में चल रहे हैं, जिसकी हमारी डिमांड लगातार पार्लियामेंट में भी है। अभी उससे तो हमें छुटकारा मिला नहीं, एक और ऊपर से लग गया हमारे ऊपर सेशन। सो लेट्स टॉक, इसको डिस्कशन का एक मुद्दा।
महिलाओं के समान अधिकारों और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए 1993 में कानून में संशोधन किया गया, मगर मुस्लिम तंजीमों ने घोषणा की कि वो शरीयत के अनुसार ही अपने मामले तय करेंगे, मगर समाज की महिलाओं को लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ लिंग भेद करता है, इसलिए वो चाहती हैं कि इस कानून की समीक्षा की जाए ताकि समाज की महिलाओं को हर मामले में बराबरी का हिस्सा मिल सके। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
और अब सुनिए खेल समाचार।
भारतीय क्रिकेट टीम ने कल हरारे में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 8 विकेट से बात दी और इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त भी हासिल कर ली। टॉस भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। उनके फैसले को सही साबित करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे का पुलिंदा 34.3 ओवर में ही केवल 126 रनों पर बांध दिया। जिम्बाब्वे के वुसी सिमांडा ही कुछ जमकर बल्लेबाजी कर सके और उन्होंने 69 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 53 रन बनाए। चामू चिभाबा ने भी 21 रन बनाए। भारत के युजवेंद्र सिंह चहल ने 25 रन देकर 3 विकेट झटके। उनके अलावा बरिंदर सरन ने 17 रन देकर 2 और धवल कुलकर्णी ने 31 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके बाद भारत ने जीत के लिए 127 रनों का लक्ष्य केएल राहुल के 33 और करुण नायर के 39 रनों के अलावा अंबाती रायडू के नाबाद 41 रनों की मदद से 26.5 ओवर में ही 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अब भले ही जिम्बाब्वे की टीम बेहद मजबूत ना हो, लेकिन वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव भारत की जीत को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं।
जब आप नई टीम को लेकर जाते हैं, भले ही जिम्बाब्वे की टीम आप कह सकते हैं कि दो असमान प्रतिद्वंद्वियों के बीच ये मुकाबला था, मगर फिर भी धोनी के लिए ये जीत एक अच्छी यादगार जीत होगी, क्योंकि एक टीम को एक सूत्र में पिरोकर, नए खिलाड़ियों को बांधकर, उनसे अच्छा प्रदर्शन करवाना और उनसे उनका जो बेहतरीन खेल है उसको लेकर सामने आना, ये बहुत बड़ी बात होती है और धोनी इसमें माहिर हैं, शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं। तो उनके लिए महत्वपूर्ण थी सीरीज, इसमें कोई शक नहीं, और अच्छा किया उन्होंने अपनी टीम के साथ, इसमें भी कोई शक नहीं।
अरब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के ऑरलैंडो में नाइट क्लब में गोलीबारी को राष्ट्रपति बराक ओबामा ने घर में ही पनपा उग्रवाद बताया है और कहा है कि अमेरिका के बाहर से की गई साजिश के संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक उपनगर मैग्नन विल में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस अधिकारी पर उनके घर के बाहर ही चाकू से हमला किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन को $26 अरब में खरीदने जा रही है। ये सौदा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे बड़ा सौदा माना जा रहा है। मेक्सिको के एक गांव में शुक्रवार को एक गोलीबारी में मारे गए 11 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शुक्रवार को कई नकाबपोश बंदूकधारियों ने इन पर गोलियां चलाई थी। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया शाकिर आलम ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।